Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paramashuddhayo Pratasmaraniyo Prempuriji Maharaj Tatha महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए कठोपनिषद में प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का छठवां मंत्र है। न सांपदायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहे नमूढम् अयम् लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। मानाधीना मेय सिद्धि मान सिद्धिस्तु दर्शनात्। प्रमाण के अधीन प्रमेय की सत्ता होती है। हम किसी भी चीज को जानते हैं और जानने के बाद उस वस्तु का अस्तित्व हमें मालूम पड़ता है। हम किसी भी चीज को है तब तक नहीं कह सकते जब तक उसमें कोई प्रमाण ना हो। इसलिए दर्शन शास्त्र ने एक नियम बनाया, मानाधीना मने प्रमाण के अधीन, मेय सिद्धि मने प्रमेय की सिद्धि। ये दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं ये प्रमेय हैं। हम रूप देखते हैं, रस का अनुभव करते हैं, शब्द को श्रवण करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं, और इन पांचों विषयों के आश्रयभूत जो पदार्थ हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसके मूल क्या है, तो कहते हैं मानाधीना, प्रमाण के अधीन इनका देखना है और देखने के अधीन उनका अस्तित्व है। हमारे पास आंख है तभी रूप मालूम पड़ता है और रूपाश्रय पदार्थ मालूम पड़ता है। कान है इसलिए शब्द मालूम पड़ता है और शब्द का स्रोत व्यक्ति पदार्थ मालूम पड़ता है। कोई व्यक्ति गा रहा है और आप दूर से उसको सुन रहे हैं तो उसके गाने से पहले गाना मालूम पड़ता है और उसके गाने से आपको व्यक्ति मालूम पड़ता है। आप समझ लेते हैं कि अमुक व्यक्ति गा रहा है, तो कान ने आपको क्या दिखा दिया, शब्द दिखा दिया और शब्द का स्रोत व्यक्ति भी दिखा दिया। तो आप प्रामाणिक रूप से कह सकते हैं कि हम अमुक भजन श्रवण कर रहे हैं और इस भजन को गाने वाला अमुक व्यक्ति है। इसलिए श्रोत्र का कितना महात्म्य है, शब्द और शब्दाश्रय, शब्द जनक, शब्द स्रोत वो आपको दिखा देता है। और हमारी आंख रूप को दिखा देती है, रूपवान पदार्थों को दिखा देती है। आंख को पदार्थ को दिखाने के लिए प्रकाश चाहिए और रूप चाहिए। प्रकाश की मदद से रूपवान पदार्थों को आंख दिखा देती हैं। जहां पर रूप नहीं है वे अरूप पदार्थ आंख के द्वारा देखे नहीं जा सकते हैं। ये दृष्टि के विषय नहीं है। ऐसे ही रसना रस को दिखाती हैं और रसाश्रय उस पदार्थ को भी दिखा देती हैं। हम रसगुल्ले खाते हैं, रस का अनुभव होता है, और रसाश्रय जो रसगुल्ला है उसका भी ज्ञान होता है। ऐसे पांचों विषयों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। न्यायिकों की एक बड़ी सुंदर मान्यता है, वो कहते हैं कि निर्गुण अगुण पदार्थ इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। जिस पदार्थ में रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं, वे पदार्थ इंद्रियों के विषय नहीं होते हैं। बात भी सत्य है, वायु का हमें आंख से दर्शन नहीं होता है क्योंकि उसमें रूप नहीं है। शब्द का हमें आंख से ज्ञान नहीं होता है क्योंकि शब्द अरूप है, शब्द निरूप है। हमें उन्हीं इंद्रियों से ज्ञान होता है, अन्य इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है क्योंकि तत्तत इंद्रियां तत्तत रस और तत्तत रसाश्रय को जानती हैं, अन्य को नहीं जानती हैं। इसलिए हमारे जीवन का जो अनुभव है वो गुणों का, गुणाश्रय पदार्थों के अनुभव का अनुभव है। लेकिन ऐसी कोई चीज है हमारे सामने जिसमें कोई गुण नहीं है, उसका अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुणाश्रय पदार्थों को हमारी इंद्रियां जान लेती हैं, मानाधीना मेय सिद्धि, यही अर्थ है इसका। लेकिन परमात्मा में क्या गुण है, परमात्मा में क्या गुण है जिसको आप जीव बोलते हैं ना, जीव जीव, जीवात्मा जिसको बोलते हैं, आत्मा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या गुण है? उसमें जब गुण नहीं तो हमारी इंद्रियां भी उसको नहीं जान पाएगी, निर्गुण है तो उसको कैसे जानेगी इंद्रियां? इसलिए प्रश्न किया, दर्शन शास्त्र में प्रश्न किया कि फिर ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण क्या है, आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण क्या है, पुनर्जन्म के अस्तित्व में क्या प्रमाण है, लोक लोकांतर के होने में क्या प्रमाण है? आस्तिक व्यक्ति इंद्रियों से भी परे एक दूसरा प्रमाण भी मानता है, ये इंद्रियां प्रमाण है, ये आपके पास जो छह इंद्रियां हैं मन के साथ, ये प्रमाण है, वस्तु के अस्तित्व में प्रमाण है। जहां इंद्रियों की गति नहीं है वहां मन की गति है, और मन उन पदार्थों को जान लेता है जैसे सुख दुख है, मन के सुख दुख हैं, आंतरिक संवेदनाएं, संवेग भावनाएं, वहां पर हमारे इंद्रियों की पहुंच नहीं है। हम आंतरिक संवेदों को जानते हैं वो हमारी आंख थोड़ी जानती है, हमारे बाह्य उपकरण कान रसना ये थोड़ी जानती है। उसको जानने के लिए हमारे पास मन चाहिए, अंदर जो भी भावनाएं उठ रही हैं वो मन के द्वारा हम जानते हैं, इसको मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। और ऐसी भी चीजें हैं जहां मन का भी प्रवेश नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, हमारा जो मन है वो नहीं जान पाता है, पुनर्जन्म को नहीं जान पाता है, जन्म और मृत्यु को जानने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। जन्म और मृत्यु श्रोत है, ये सुना हुआ है, श्रवण का विषय, हम अपने जन्म को नहीं जानते हैं। नच स्वजन्म नाशम व दृष्टुम अर्हति कश्चन, आपका जन्मदिन आप मनाते हैं, वो जन्मदिन आपको मालूम पड़ा अपने आप की किसी ने बताया है, और न बताया होता तो मालूम होने का कोई उपाय नहीं है। और ये जन्म तारीख का जो विवाद है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों का भी होता है, बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसा नहीं कि छोटे लोग ही नहीं जानते, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी भ्रम है कि हमारा जन्म कब हुआ, क्योंकि जन्म जब हुआ तब हम तो थे नहीं। हमारा जो अस्तित्व है वो जन्म के बाद का है। आप षड विकार श्रवण करते हैं, छह विकारों में पहला आपका विकार क्या है? इस शरीर का प्रथम विकार जायते। इस शरीर की प्रथम जो अभिव्यक्ति है ना वो जायते, और उसके बाद फिर अस्थि। जायते के बाद अस्थि है। अस्थि पहला होता ना तो जायते को हम जान सकते थे। पहले यदि अस्थि होता और उसके बाद जायते होता तो हम अपने जन्म को जान लेते, हम कहां पैदा हो रहे हैं, हम किससे पैदा हो रहे हैं, वो समय क्या है, ठंड है कि गर्मी है, सब जान लेते हैं। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है ना वो जायते के बाद का अस्तित्व है, इसलिए हम अपने जन्म की प्रक्रिया को हम नहीं जान पाते हैं। क्योंकि संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुराधीना, आंखें उन्हीं पदार्थों को जान सकती जो वर्तमान में हो। पदार्थ वर्तमान, यदि पदार्थ भविष्य में हो, पदार्थ अतीत में हो तो हमारी आंखें हमारी इंद्रियां नहीं जान सकती, और असंबद्ध पदार्थ को भी इंद्रियां नहीं जानती। आंख को देखने के लिए वस्तु आंख के सामने चाहिए, रस को चखने के लिए रसना को रस के साथ दूर होना चाहिए, कान से शब्द का श्रवण करना हो तो कान के साथ शब्द का संबंध चाहिए। इसलिए हम नहीं है और हमारा जन्म हो रहा है, नहीं है इसलिए जन्म हो रहा है, और होते तो नहीं है इसलिए जन्म हो रहा है। हम जन्म काल में नहीं है, इसलिए शास्त्र ने कहा कि प्राग भाव, हमारे जन्म के प्रति प्राग भाव कारण है। वस्तु के जन्म के प्रति वस्तु का प्राग भाव कारण है, वस्तु का नहीं होना होने के प्रति कारण है। पहले नहीं है इसीलिए हो रही है। और हम मृत्यु को भी नहीं जान पाते हैं। मृत्यु को जानने के लिए आपको मृत्यु के समय होना चाहिए, मृत्यु के बाद में होना चाहिए। मृत्यु के पहले जब तक हम जीवन में हैं तब तक हम मरे नहीं हैं, और जब हम मरे होंगे तो हमारे पास जीवन नहीं होगा। आपको किसी ने आवाज लगा दी, आप सोए, आपने आवाज लगा दी, हां सो रहे हैं, सो गए, इसका मतलब अभी आप नहीं सोए हैं। आप बोल रहे हैं कि हम सो गए हैं, इसका अर्थ अभी आप सोए नहीं है, सोने की प्रक्रिया में है। और जब आप सो चुके होंगे तो आप आवाज लगा सकते हैं क्या? आपको कितना भी कोई आवाज लगा दे आप सो चुके हैं, आप कभी नहीं कह सकते कि हां मैं सो रहा हूं। और आवाज लगा दी तो समझना कि आप सोए नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं मर गया, इसका मतलब आप मरे नहीं। वो आवाज कौन लगा रहा है, कौन बोल रहा है कि मैं मर गया, वो तो जिंदा हो गया ना। इसलिए नारायण जब हम मरेंगे ना तो उस समय उस मृत्यु को जानने वाला कोई नहीं होगा। होगी मृत्यु और जीवन जानता है, जानने की प्रक्रिया का ही तो नाम जीवन है। आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से श्रवण कर रहे हैं, जिह्वा से चख रहे हैं, आप मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से निश्चय कर रहे हैं, और यही संवेदना संवेग का ही तो नाम जीवन है। जानने की प्रक्रिया जहां है वही जीवन है, और जहां जानने की प्रक्रिया ही ना हो तो आप उसको जीवन नहीं कहेंगे। यहां तक कि आप सो रहे हैं तो आप जानने की प्रक्रिया से अंदर हैं कि बाहर हैं। बड़ी मजेदार बात। जब आप सोते हैं तो शास्त्र आपको कहता है कि आप प्राज्ञ हैं, और प्राज्ञ का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से नहीं जानने वाला, प्र अज्ञ प्राज्ञ, अच्छी प्रकार से आप नहीं जानने में चले गए हैं, अच्छी प्रकार से। अब आप कुछ भी नहीं जानते, कमरे के अंदर क्या हो रहा है, चोर ने आके चोरी की और बहुत सारी चीजें आपने नहीं जानी, और आप कहते भी हैं मैं सो रहा था, कुछ नहीं जान रहा था। लेकिन ये प्राज्ञ होना केवल बाह्य पदार्थों के होने में है, लेकिन आप शास्त्र को पूछना कि आप सुषुप्ति में भी जानते हैं, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? बोले सुखम अहम अस्वापसम किंचित न अवेदिशम, मैं सुख से सो रहा था। आपको स्मृति होती है कि मैं सुख से सो रहा था, माने सुख का अनुभव करने वाला कोई वहां जाग रहा था। वहां पर भी ज्ञान है, बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं लेकिन सुख का ज्ञान है, और यहां तक कि अज्ञान का भी ज्ञान मानते हैं हम। न किंचित अवेदिशम सुप्तो चितस्य सौसुप्त तमो बोधो भवेत स्मृति ही साच अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदातम। पंचदशीकार कहते हैं कि सोकर उठने वाले व्यक्ति में स्मृति जगती है। वो कहता है मैं कुछ नहीं जान रहा था, इसका मतलब कि अज्ञान का बोध वहां था और उसकी स्मृति है। अब जानने की प्रक्रिया जहां है वो जीवन है, चाहे जाग रहे हैं तब, सो रहे हैं तब, और स्वप्न देख रहे हैं तब भी जीवन है। लेकिन जब मृत्यु आती है ना तो जीवन विदा हो जाता है, उस समय जीवन नहीं रहता है, और जीवन ही नहीं है तो आप फिर मृत्यु को जानेंगे कैसे? इसलिए हम अपने न जन्म की दृष्टा है और न मृत्यु की दृष्टा है। हम नहीं जान सकते कि हम पैदा हुए, और हम न जान सकते कि हम मर गए। लोग कहेंगे कि ये मर गया, लेकिन आप कहने के लिए नहीं बचेंगे कि मर गया। इसलिए सुनी सुनाई बात है, ये परोक्ष बात है। दूसरे ने कहा आपने आप पैदा हुए, आपने माना, अच्छा सचमुच ये अंधविश्वास है कि नहीं? एक वैज्ञानिक सोचता है कि मैं देखूंगा तब मानूंगा, एक नास्तिक कहता है कि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि दिखता नहीं है, जो प्रत्यक्ष का विषय उसको मानता है वो। हम पुनर्जन्म नहीं देखते हैं, हम जीवात्मा नहीं देखते हैं, हम लोक लोकांतर नहीं देखते, इसलिए हम नहीं मानते हैं। जो दृष्टि का विषय है वही हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन वो नास्तिक व्यक्ति अपने जन्म को मानता है कि नहीं? लेकिन उनको पूछो कि आपने जन्म को देखा है? नहीं देखा है। और नास्तिक व्यक्ति को पूछो कि तुम अपने मृत्यु को मानोगे कि नहीं? तुम मरोगे? हां मरूंगा। लेकिन मानते कैसे हो? तुमने तो देखा नहीं। लेकिन ये परोक्ष ज्ञान, शब्द पर भरोसा नास्तिक का भी है, उसको भी मानना पड़ता है, उसको भी श्रद्धा करनी पड़ती है। ये श्रद्धा जन्य, जन्म और मृत्यु की जो स्वीकृति है वो श्रद्धा जन्य है। इसमें आपका और कोई श्रद्धा के अलावा कोई प्रमाण नहीं है। तो नारायण यहां पर भी श्रुति कहती है न सांपराय प्रतिभाति बालम। कुछ लोग कहते कि वो नहीं है इसलिए हम नहीं मानते हैं। न सांपराय, सांपराय शब्द का अर्थ है यह लोक, परलोक, जो अदृश्य लोग हैं, और इस लोग इस जीवन से भी परे जो आत्म तत्व हैं। बोले न भाति न प्रतिभाति, वो जो दिखाई नहीं देता है, आत्म तत्व दिखाई नहीं देता है, पुनर्जन्म दिखाई नहीं देता है, लोक लोकांतर नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए न प्रतिभाति, इसलिए नास्ति, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वे नहीं हैं, ऐसा लोग मानते हैं। श्रुति कहती कि बालम, वो बाल हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देने के बाद भी मानते हैं, बहुत सारी चीजें हम मानते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें। इसलिए यहां श्रुति कहती कि नहीं मानना ये कोई श्रेष्ठता नहीं है, नहीं दिखने के कारण नहीं मानना ये कोई श्रेष्ठता नहीं है, ये हमारा अज्ञान है। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, इसमें उन्होंने दूसरा तर्क दिया। थोड़े बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं क्योंकि वो दिखता नहीं, लोक लोकांतर नहीं क्योंकि वे दिखते नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर रामकृष्ण परमहंस के पास गए और वे नास्तिक थे। रामकृष्ण परमहंस परम आस्तिक, जो काली के साथ बात करते हैं केवल आस्तिक नहीं है, केवल आस्तिक ही नहीं, जो ईश्वरी भगवती काली के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, बातचीत करते हैं और उनके सामने जाने के बाद लोगों को मानना पड़ता है ईश्वर है। कितने आश्चर्य की बात, आप किसी अनुभूति संपन्न साधु के सामने जाते हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं कि भगवान है, आपने देखा है क्या? आप उनके सामने बैठ जाते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि भगवान है। ऐसा व्यक्ति जिनके सानिध्य मात्र से व्यक्ति आस्तिक बन जाते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर गए और नारायण उन्होंने उनको कहा कि ईश्वर नहीं है और आप इस पाखंड में क्यों पड़े हुए हो। आज वो बच्चे की तरह समझा रहे थे, रामकृष्ण परमहंस को समझा रहे थे वो। और जब गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास तो उनके मन में निश्चय था कि आज मैं रामकृष्ण परमहंस को नास्तिक बना के वापस आऊंगा, उसका पाखंड में छुड़ा दूंगा। ये जो पागलपन है, नाचते गाते हैं, बेहोश होकर गिरते हैं, अरे बोले मनोरोग हैं, आज वो भाव समाधि में जाते थे वो। और ईश्वरचंद विद्यासागर सोच रहे थे कि ये इसकी मनोरोग बीमारी है कोई, और वो छुड़ाने के लिए गए, बीमारी छुड़ाने के लिए गए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, बड़ा अद्भुत आदमी था बोले रामकृष्ण परमहंस, बोलते जाते थे ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, बोलते जा रहे हैं ईश्वर नहीं है और अनेकों तर्क दे रहे हैं, घंटों बोलते। और रामकृष्ण परमहंस ऐसे सुनते मानो कोई बहुत बहुत गहराई से श्रवण कर रहा हो, बहुत ध्यान से। और ईश्वरचंद विद्यासागर को निश्चय हो जाता कि अब ये समझ गए हैं, जब ईश्वर नहीं है बोलते गर्दन हिलाते हैं रामकृष्ण परमहंस। और ईश्वरचंद विद्यासागर समझ लेते कि अब काम हो गया मेरा, अब ये समझ गए ईश्वर नहीं है और चुप हो जाते थे। और एक शब्द बोलते थे केवल रामकृष्ण परमहंस, नहीं ईश्वरचंद वो है, और इतना बोल के फिर चुप हो जाते थे। ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं मैं एक घंटों उनके सामने प्रवचन करता ईश्वर नहीं है, लेकिन वो एक शब्द मेरे ऊपर भारी पड़ जाता था, ईश्वर है और मैं देखता हूं, और चुप हो जाते थे। और घंटों फिर ईश्वरचंद विद्यासागर फिर पुनः सिद्ध करने की कोशिश करते ईश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं। अंत में रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ईश्वरचंद जैसे मैं तुमको देखता हूं वैसे मैं ईश्वर को देखता हूं, जैसे मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं वैसे मैं ईश्वर से बातचीत करता हूं, और तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति बोले ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता है, और आज नहीं तो कल तुम्हें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। आए थे रामकृष्ण परमहंस को नास्तिक बनाने के लिए, और जब चले गए तो स्वयं आस्तिक बन के चले गए, और उनको भरोसा हो गया कि ईश्वर है, ईश्वर है। नारायण ये तर्क बौद्धिक शक्ति से कोई व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता है, इसलिए यहां श्रुति कहती है न प्रतिभाति, वो दिखाई नहीं देता है इसलिए नहीं है ईश्वर, ऐसा मानते हैं वो बाल है, बाल है वो बच्चे हैं। आज मुझे लगता है कि श्रुति थोड़ा कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही है, प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, ये गाली है। बहुत से लोग बुद्धिमान तो नहीं होते हैं लेकिन वासना में इतने होते हैं, संसार की वासनाओं में वो इतने रचे पचे होते हैं कि वो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हैं। प्रमाद्यंतम, प्रमाद के द्वारा भी हम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं और कई बार हम मानते हुए भी नहीं मानते हैं। आप ध्यान देना है क्या कह रहे हैं, हम ईश्वर को मानते हुए भी नहीं मानते हैं, हमारा मानना भी नहीं मानने जैसा ही होता है। ये प्रमाद्यंतम, प्रमाद करते हैं हम, प्रमादम वय मृत्यु हो। और ये प्रमाद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रमाद माने प्रमाम द्यति खंडयति तिरस्करोति इति प्रमादम। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, प्रमा माने सत्य, प्रमा माने जैसा है वैसा, और उसको हम तिरस्कृत कर देते हैं, उसी का नाम प्रमाद है। सत्य को अस्वीकार करने का ही नाम प्रमाद है। जैसे आलस में, अविवेक में, वासना के प्रकर्ष में हम ईश्वर के सत्य को अस्वीकार कर देते हैं, यही तो प्रमाद है। और वित्त मोहेन मूढ़ाम, श्रुति कहती कि वित्त के मोह में भी तो हम मूढ़ हैं। यहां वित्त माने विद्री लाभे धातु से वित्त शब्द बनता है, वित्त शब्द का अर्थ तो धन होता है, लेकिन यहां वित्त शब्द का अर्थ धन भी है और वित्त शब्द का अर्थ मकान भी है, वित्त शब्द का अर्थ जहां पर हमारी वासना वो भी है। और वित्त मोहेन मूढ़ हम मूढ़ हो गए, मूढ़ माने मूढ़े हुए, सीधार्थ मूढ़ माने मूर्ख, मूढ़ माने ना समझ, आंखों पर पर्दा पड़ा है, मूढ़ माने बहिर्मुख, हमारा मन विषयान्मुख हो गया। और किसी लिए तो कहते वित्त मोहेन, ये दुनिया के पदार्थों के पाने के मोह से